ओम शांति। आज के इस तीसरे सत्र में हमारी आदरणीय सुषमा दीदी यहाँ पधार चुके हैं, हम कटर ध्वनि से उनका वेलकम करेंगे। दीदी के लिए क्या कहे, हिमालय से निकली वो ज्ञान गंगा, हिमाचल से निकली वो ज्ञान गंगा, पंजाब की गलियों से निकल के मिल गई आबू परमात्मा ज्ञान सागर में, और आध्यात्म की गहराई उन्होंने इतनी अंदर रुचि पैदा की कि देश विदेश की धरती में अपने प्रेम और ज्ञान से सींच दी। वो और कोई नहीं, हमारी सुषमा दीदी जी है। सुषमा दीदी हिमाचल प्रदेश से है, इन्होंने अपनी पढ़ाई पंजाब में पूरी की, वेल एजुकेटेड फैमिली से है, इनके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे, और वर्तमान समय सुषमा दीदी जयपुर किशनपुर बाजार सेंटर, जो जयपुर का पूरा विस्तार है, वहां के सब जोन हेडक्वार्टर की हेड है, तथा बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर है। दीदी ने सिर्फ बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग नहीं तथा अलग अलग विंग्स में भी काफी कोर्सेस किए हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग। तो आज जो हमारे लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कैसे हम उसको रिजोल्व करें, सॉल्व करें, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आदरणीय सुषमा दीदी।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतानें, सर्व भाई एवं बहने, आप एक बहुत सुंदर विषय में पहले विचार विमर्श कर रहे थे। मुझे लगता है उससे आपका काफी सॉल्यूशन हो गया होगा। हो गया नहीं? कॉन्फ्लिक्ट्स, आज का विषय हमारा है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेजोल्यूशन, समस्याएं और समाधान। समस्याएं सबकी हल हुई? हल हुई? हो रही है? तो हल कब हो सकता है, सॉल्यूशन समस्याओं का कब हो सकता है? क्या जवाब देंगे? आपके आगे कोई भी बात आती है, कहीं बिजनेस में कुछ अटक भी जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, इसका हल कैसे करें भाई? नेगोशिएशन करेंगे, और क्या करेंगे? आप मैसेज यही भेजते हो ना कि भाई समझौता करना चाहते हो तो कर लो, तभी तो नेगोशिएशन पर आएंगे ना हम। अगर किसी का विचार ही ना हो, कोई कोई रेस्पॉन्स कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे कोई आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करना है, अब तो कोर्ट में ही होगा जो होगा, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर कुछ नहीं कर सकते ना, हैं? सब कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो वास्तव में जितने भी आज के संसार में आप समस्याएं कहो, लफड़े कहो, झगड़े कहो, आपसी वैमनस्य कहो, घृणा कहो, द्वेष कहो, ये सब कहां पैदा हो रहा है? कहां है इसकी खेती? इसकी खेती कहां हो रही है भाई? अब इसी को ठीक करना पड़ेगा, और इसी को ठीक करने का साधन आध्यात्मिकता है। मन में आता है कि ये सब होता क्यों है। अभी भी मैं देख रही हूं आज की हमारी इस सभा में, जिस एज ग्रुप के हमारे भाई बहने यहां बैठे हैं, कोई ना कोई ग्रामीण परिवेश से होंगे, और पहले जब हम गांव में रहते थे, एक एक परिवार में कितने लोग होते थे, और आज कितने होते हैं? आपको मैं एक रियल इंस्टेंस सुनाती हूँ। एक बेबी ने अपनी नानी से पूछा, हमारे पास आती हैं वहां, बोली कि नानी आप कितने भाई बहन थे? तो नानी ने बताया हम 4 बहनें 3 भाई 7 जने थे। अब वो 7-8 बरस की बेबी, नानी आप 7 जने, फिर 2 आपके मम्मी पापा, 9 जने। उसने कहा कि फिर मैं हमारे घर में 3 सर्वेंट थे। कहती 12 जने। फिर क्योंकि गाय भैंस थी तो कहती है कि मम्मी नानी एक बात बताओ, ये 12 लोगों का खाना कौन बनाता था? आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं, आज का बच्चा ये पूछता है कि 12 लोगों का खाना कैसे बनता है, और हम क्या कहेंगे सर? 12 क्या, ऐसे ऐसे परिवार आगे बच्चों की शादियां हो जाती, बहु बेटे आ जाते, घर में 20-25 के परिवार का खाना, वही चूल्हा वही लकड़ी और उसी पे बनता था। और कितने बर्तन होते थे? बर्तन कितने होते थे? कितने होते थे? किसी के घर में बर्तनों की दुकान नहीं होती थी, समझ गए ना? आजकल घरों में खाने वाले 2 या 4, ज्यादा से ज्यादा 6, और डाइनिंग सेट, डिनर सेट, लंच सेट, टी सेट, पता नहीं कितने तो हमने सेट रखे हुए हैं, जैसे वो एक शोरूम दुकान तो यही खुला हुआ है। और उसी को संभालने में, लाने में, दिखाने में, इसी लफड़े में पड़े हुए हैं। ये है कॉन्फ्लिक्ट। जब मनुष्य केवल भौतिकवादी बन जाता है, ध्यान देना, भौतिकता का विरोध नहीं है, लेकिन भौतिकवादी बन जाना एक अलग चीज है। हमारे यहां तो जो आरती गाई जाती है उसमें ही हम गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, सुख भी मांगते हैं संपत्ति भी मांगते हैं। लेकिन अगर हम इस मनुष्य को देखें, इस शरीर को देखें, भगवान ने हमको 2 आंखें दी हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी की एक आंख में ना दिखाई दे तो वो भी तो जीवन काटता है ना, और जिसकी दोनों आंखें नहीं काम करती वो भी काट लेता है। 2 टांगें दी हैं पर अगर एक टांग काम न करे तो भी सारा जीवन लंगड़ा के चल लेता है। लेकिन हमें अच्छा कब लगता है? जब हमारे दोनों हाथ हों। मैं पिछले दिनों एक हॉस्पिटल में गई, वहां डॉक्टर इतनी अच्छी, उसका राइट हैंड बस यहां तक के आगे है ही नहीं, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने और लेफ्ट से ही लिखती है सब। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा आपका ये कैसे? बोली जन्म से है, बट शी वॉज वेरी हैप्पी, उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो मुझे लगा कि देखो अगर हमारे पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं और उसको 1 है, वो डॉक्टर बन गई, एक हाथ से भी जीवन काट रही है ना, लेकिन कठिनाई तो होती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भौतिकता और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का समन्वय नहीं होने के कारण आज हमारे आगे समस्याएं ही समस्याएं हैं। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, व्यापार का ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, विज्ञान ले लीजिए, परिवार ले लीजिए, समाज ले लीजिए, आप बताइए कौन से क्षेत्र में सुख शांति है? आपस में नहीं बनती है। पिछले दिनों एक कपल आया, मैंने उनसे पूछा आज आप अकेले कैसे आए भाई साहब, क्योंकि दोनों आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो कहा बहन जी मैं आज इसीलिए आया हूं। मैंने कहा थोड़ा हमें ना स्पेस चाहिए। मुझे इतना सुन के वो लगा, मैंने कहा फिर उसको अभी 2-3 महीने के लिए पियर ही भेजा है। मनुष्य आपस में ठीक न रहने के कारण स्पेस, आगे हम स्पेस को क्या समझते थे भाई, स्पेस तो रहने के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। आजकल आपस में भी स्पेस चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्ट यही है ना। प्रतिदिन का जीवन देखिए, मेरे से ज्यादा अनुभव आपके पास होगा, हमारे पास भी कई आते रहते हैं। एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, छोड़ दिया। क्यों भाई तूने क्यों छोड़ दिया? नहीं इसमें पैसा, अब मैं दूसरे में जाऊंगा। अब उसके लिए उसको टेंशन हो रहा है। आगे क्या था, आध्यात्मिकता क्या है? क्योंकि समस्याओं की लिस्ट मैं सुनाऊं आपको, उससे ज्यादा आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस लिस्ट को नहीं गिनना चाहती हूं, लेकिन हमें क्या चाहिए? आध्यात्मिकता किसको कहते हैं? आज हम ये समझते हैं कि ये जितने हमारे बाहरी रूप है ना, अगर मैंने यहां तिलक लगा लिया, माला डाल ली, ये हिंदू हो गया, क्रॉस डाल लिया क्रिश्चियन हो गया, पगड़ी लगा ली तो सिख हो गया, बस हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है स्पिरिट, स्पिरिट से बना है ना स्पिरिचुअलिटी। तो हम और आप कौन है? हम और आप कौन है? एक स्पिरिट ही तो है। अक्सर लोग कहते हैं इसमें काम करने की ना स्पिरिट नहीं है, करेज नहीं है, ये रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। वो स्पिरिट कहां से आएगी? जब पहले मैं अपनी स्पिरिट को पहचानूं तो मेरे अंदर स्पिरिट आएगी ना। लेकिन मैं तो क्या जानती हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सीईओ हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं मालिक हूं, ये है मेरी स्पिरिट। तो अब इसमें तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें धोखा ही धोखा होगा। तो आजकल आप सब हमारे व्यापारी भाई बहने और परिवार बैठे होंगे, कौन सा एक शब्द कहते हो आप सब लोग? आजकल की दुनिया में क्या है, कहते हैं बहन जी धोखा ही धोखा है, ऐसे ही कहते हो ना, यही कहते हो ना, धोखा ही धोखा है। कहां करें धंधा, किससे मिले, धोखा ही धोखा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमें अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता नहीं है। तो कई कह देते हैं हम तो सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं, फिर भी धोखा मिलता है। तो मुझे दृष्टांत याद आता है, मैं आई तो चर्चा गीता की ही चल रही थी। एकलव्य गुरु के पास जाते हैं कि मैं आपसे तीर चलाना सीखना चाहता हूं, द्रोणाचार्य के पास। उन्होंने मना कर दिया था, ऐसे ही है ना कहानी। फिर एकलव्य ने क्या किया, उसने क्या किया, मूर्ति बना ली। और अगर आज का कोई यूथ होता वो क्या करता, इमेजिन आज का एक यूथ इंटरव्यू के लिए जाए, उसको वहां रिजेक्ट कर दिया जाए फिर वो क्या करेगा? कोई जवाब दे। हाँ, वो क्या करेगा? एक तो डिप्रेस हो जाएगा और क्या करेगा? हाँ, रिएक्ट भी करेगा और क्या करेगा? उसके मन में तो इतना वो रिवेंज, एकदम वो सोचेगा ये अच्छा मैं पता करता हूं ये कौन है, अंदर में बदले की भावना पैदा हो जाएगी। यही होगी ना, क्या विचार है? यही होगा ना। लेकिन एकलव्य की श्रद्धा कहीं कम नहीं हुई, मन के अंदर दुर्भावना नहीं आई। रेसिज्म है, कास्टिज्म है, नो रिएक्शन। जाति के कारण ही तो उसको मना किया गया था। आजकल तो हम सड़क पर आ जाते हैं, हमारी जाति को क्या चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए। सब रिजर्वेशन ले लो, बाकी क्या? वो रिजर्वेशन लेने नहीं गया, आरक्षण के लिए नहीं गया, गुरु के साथ बदला लेने नहीं गया, गुरु को मारने नहीं गया, गुरु को रिश्वत देने भी नहीं गया। आजकल तो हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं है भाई, आप कुछ टेबल के नीचे से कोई ऐसा सोर्स निकाला जाए, कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर, कोई कुछ, लेकिन उसके अंदर की जो श्रेष्ठ भावना थी, उस भावना ने बल्कि गुरु को हिला दिया कि जिस गुरु ने अपने एक शिष्य को इतना होशियार बनाया और गुरु ने जब उसको देखा तो ये कौन? फिर कहानी यही नहीं खत्म हो जाती है। मैंने जंगल में रहकर अभ्यास किया, गुरु के लिए मन में अगाध श्रद्धा रही, तीर चलाना सीख गया। जब गुरु ने देखा इतना होशियार है, गुरु ने क्या किया? दक्षिणा चाहिए। एक गरीब सोच सकता था ना? हम क्या कहते हैं आजकल तो गरीब मार होती है। कौन है गरीबों का? उसने उतने ही प्यार से गुरु को दक्षिणा दी। तब भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने तेरे से क्या लिया है, तूने मुझे क्या दिया है। लेकिन आज मनुष्य मन में स्वार्थ इतना जबरदस्त है, एक तरफ अभिमान, एक तरफ स्वार्थ। आप थोड़ा सा देखो, एक मिनट सब सीधे होके बैठो, देखो करके देखो मेरे साथ ये अभ्यास, सारे एक मिनट सीधा होके बैठो, अपनी आंखें खुली रखो ताकि आप अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, बंद नहीं करना, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। खुली आंख रखो, रिलैक्स रहिए और अपने आप अपने अंदर से पूछिए, क्या सचमुच अभिमान, ईगो के कारण, स्वार्थ के कारण मनुष्य दुखी है? अपने भीतर ही भीतर अपने से पूछिए, भीतर ही भीतर जरा बात कीजिए। मैं केवल आपको मदद के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं। मनुष्य जीवन क्या अभिमान और स्वार्थ के बिना चल सकता है? अगर अभिमान और स्वार्थ न हो तो कौन सी भावना मनुष्य मन में हो जिससे स्वयं भी सुखी रहे और दूसरों को भी सुख मिले? किया विचार, क्या लगता है, स्वार्थ और अभिमान के बिना रह सकते हैं या नहीं? सबका विचार है, हाथ उठाओ जो कहते हैं रह सकते हैं। राइट कह रहे हैं। हम एक दूसरे को देखकर कि ये मेरा साथी कल तक तो साइकिल पर आता था, अब इसने ये बाइक कैसे ले लिया, और ये बाइक वाले ने फोर व्हीलर, और फिर उसमें तो कोई रेंज ही नहीं है, किसके पास क्या 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 लेटेस्ट मॉडल, अरे भाई सारा दो नंबर का पैसा है। आज की दुनिया में देखो, मैं अभी यहां आने से पहले चार दिन पहले चेन्नई में थी, वहां भी हमारा प्रोग्राम था मेडिटेशन के स्पेशल 1 वीक, तो वहां एक भाई जब मुझे उस स्थान से एयरपोर्ट तक लेके आ रहे थे, कहते बहन जी आजकल ना यहां रियल स्टेट का काम सारा ठप पड़ा है। मैंने कहा क्यों 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 भाई बताओ, जवाब होगा ना आपके पास। कहते आजकल दो नंबर का पैसा नहीं है, मोदी जी ने जो है ना भ्रष्टाचार को बंद किया है। आजकल सब जगह कहीं भी जाओ, आप भी अलग अलग शहरों से होंगे, बिल्डर्स का क्या हाल है, प्रॉपर्टी डीलर्स का क्या हाल है। तो हम कहते हैं रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, यही है ना, क्योंकि हमारे अंदर की भावनाएं बदल गई हैं, हमारे अंदर की भावनाएं बदल गई हैं। आप देखिए, कभी बारिश नहीं होती है तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं पाप बहुत बढ़ रहा है इसलिए बारिश नहीं हो रही। क्या कभी आपने सोचा है कि पाप का और बारिश का क्या संबंध है? पाप मैं और आप कर रहे हैं, बारिश तो ऊपर से आनी थी, क्या हुआ? हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान फिर से भारतीय संस्कृति के उस ओरिजिन पे ले जाना चाहती हूं। हमारे यहां का शब्द क्या है, भाषा कहां से शुरू होती है? तो कहते हैं ओम, ऐसे ही है ना, ओम। और ओम जहां भी बनाएंगे लिखेंगे वो एक ओरा सा बना देते हैं, और ओम की जो ध्वनि है, यूं तो हम कोई गीत गाते हैं थोड़ा नीचे ऊपर है ओ, वो साउंड आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे बढ़ती है। और उसी के लिए क्या हो रहा है, आप देखो कहीं तो मंदिर में घंटा बजाते हैं, वाइब्रेशन, उसकी आवाज अलग है। आप बौद्ध धर्म में जाइए, उनका वो इतना सा अलग अलग साइज के एक कटोरा नुमा, और वो लकड़ी से यूं यूं धीरे धीरे करते रहते हैं ऐसे ऐसे बाहर, और फिर धीरे से फिर वही ध्वनि निकल आती है ऐसे। वाइब्रेशंस काम कर, तो कहते हैं किसी ने गंगा से पूछा, गंगा नदी से, कितने परंपरा से लोग नहाते आ रहे हैं और अपने पाप धो रहे हैं। गंगा मैया, आप क्या करती हो इन पापों का? कहती, मैं कुछ नहीं करती, लोग नहाते हैं, पाप धोते हैं, मैं तो सागर में डाल देती हूं। सागर को पूछा, तुम क्या करते हो? कहता, मैं कुछ नहीं करता। बादल बन के जाते हैं, पाप चले जाते हैं। बादलों को पूछा, तुम क्या करते हो? कहा, हम जो करते हैं उन्हीं पे बरसा देते हैं। तब मुझे याद आया, आपने भी बचपन में देखा होगा कि जो गुंबद बने हुए होते हैं ना, जहां आप जैसी आवाज निकालेंगे वही लौट के आती है। मैं हिमाचल से हूं, एक पहाड़ी से खड़े होके आप थोड़ी आवाज लगाओ किसी को तो क्या होता है? वही लौट के आती है। आती है ना, वहां बुलाने का ढंग ही ये है। आजकल तो मोबाइल हो गया, आगे थोड़ी थे, कोई बहुत दूर होता था, कुआं घर से नीचे है तो ऊपर से हो करते थे तो वो नीचे वाला समझ जाता है, वो नीचे से रिस्पॉन्स कर देता है। तो एक पहाड़ी में एक परिवार रहता था, छोटा बच्चा था 6-7 साल का, नाराज हो गया, रोता रोता घर से बाहर निकल गया और पहाड़ी में जाकर के बाहर की तरफ कहने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। उसको आवाज इको सुनाई दिया, आई हेट यू। डर गया, भाग के अंदर आया, मां वहां कोई गंदा बच्चा है, कहता है आई हेट यू। मां समझ गई, मां ने कहा जाके कहो आई लव यू, आई लव यू। बच्चा गया, बोला आई लव यू, आई लव यू। क्या हुआ? वही लौट के आया, आई लव यू, आई लव यू। तो मीठे भाई बहनों, सॉल्यूशन ये है कि जो मेरे मन की भावनाएं हैं इनको क्या करना होगा, क्या करना होगा, इनको अभी शुद्ध करो। अगर मेरे मन से ये भावना निकलेगी आई लव यू, तो आप क्या कहेंगे? हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, और मैं कहती हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, आई अप्रिशिएट यू, आई लव यू, आप क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना। चाहे आपको हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आए ना आए, कोई बात क्लियर हो ना हो, पर आप कहेंगे नहीं, जो सुनाया ना वो तो बहुत अच्छा सुनाया। अगर हम दूसरों को देखेंगे, मैं ये सोचूं ये सामने बैठा ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ना, ये तो मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है, देखने में ही लग रहा है एकदम ब्लैंक, तो उसका रिएक्शन भी क्या आएगा? वही आएगा। लेकिन अगर मेरी भावना ये है, मुझे इनको सबको बहुत अच्छा 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 देना है, फिर कोई ले ना ले उसकी मर्जी है। तो आप सब बहुत भाग्यवान हैं, भाग्य विधाता के घर में आए हैं और भगवान आपको बराबर भाग्य दे रहा है। इतनी अच्छी बातें आपको कहीं सुनने को मिलती हैं, आप जाइए कहीं भी, किसी भी सत्संग में जाए, कोई ना कोई कथा कहानी सुनने को तो मिल जाती है, अच्छे अच्छे भजन कीर्तन सुनने को मिलते हैं। लेकिन कैसे अपने चिंतन को परिवर्तन करें, उसके लिए अपने भीतर में कैसे जाएं, साइलेंस में कैसे रहें, ये एक्सपेरिमेंट आपको यहां मिल रहा है। तो भाग्यवान हो गए क्योंकि आपको सुनने को ये बातें मिल रही हैं। लेकिन अगर आप अपने भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अपना ही परिवर्तन करना होगा, अपने अंदर एक प्लेज लेनी होगी, क्या भी हो मुझे आज के बाद क्या करना है, एक लव्य की तरह एकदम शुद्ध श्रेष्ठ भावना सबके लिए रखनी है। रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं, या व्यापारी क्या कहेगा, हमें तो बेईमानी करनी पड़ती है। ऐसे मैं जयपुर से आई हूं, हमारे वहां पता नहीं कोई जयपुर से आए हैं क्या लोग, कुछ एक ही हैं, एक हैं बनी पार्क में, छोटे छोटे जो बल्ब बनते हैं ना ऑटो लाइट्स के, वो उनके पास बनते हैं। मैं समझती हूँ पिछले 10-12 साल से वो हमारे पास रेगुलर हैं। तो उनकी जो अपनी फैक्ट्री है, जब उन्होंने ये ज्ञान सुना और यहां बाबा का घर देखा, तो अपनी फैक्ट्री में उन्होंने बहनों को बुला के ये 7 दिन का कोर्स कराया। और अब उस फैक्ट्री में जैसे यहां ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चलता है, मॉर्निंग डिस कोर्सेज होते हैं, अब वहां भी 100 लोग उनके जो लेबर है, लंच टाइम में उन्होंने फिक्स किया हुआ है, आपस में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, वो डिस्कोर्सेस पढ़ते हैं। और उसको इतना फायदा हुआ है, कहता आगे ये जो लोग टाइम वेस्ट करते थे ना बीड़ी सिगरेट पीने में, अब वो भी बन गए कौन, राजयोगी। तो वो बीड़ी सिगरेट का टाइम कहां जाएगा, कहां जाएगा। आगे केवल वहां जेंट्स ही काम करते थे, अब जब से ये ज्ञान योग का वातावरण बना है ना, तो वहां बहनें भी काम करने लगी, एग्जाम्पल बन गया है वो। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। जब हमारे अंदर ये शुभ भावना रहती है, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। मेरे घर में सर्वेंट है, काम करती है, अगर वो एक दिन थोड़ा लेट आए और हम कहते हैं तू तो रोज ही लेट आती है, कारण उसका भी जेन्युइन हो सकता है, अब वहीं से क्या शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी। लेकिन मैं सबको हंस के कहती हूं, क्योंकि हमारा आश्रम बहुत बड़ा है, वहां हमें सफाई के लिए 2-3 हमारे पास हैं, उनको अगर ऑल ऑफ सडन कुछ होता है वो तो अलग बात है, तो भी फोन करेंगे, कभी लेट नहीं आएंगे। और कभी उनको अचानक ना भी आना हो ना, फोन करके कहेंगे दीदी आज हम नहीं आ सकेंगे। मैं कहती हूं हमारे तो सर्वेंट भी इतने अच्छे हैं, कभी ये लगा ही नहीं। तो मैं हमेशा सबको कहती हूं सर्वेंट लेट आई ना, उसको पहले पूछो तो सही तू लेट क्यों आई, उसको चोट लगी है, बीमार है, घर में बच्चा बीमार है, आजकल गर्मी के दिन है, उसको भी जरा ठंडा शरबत पिलाओ ना। लेकिन ठंडा शरबत पिलाने की जगह हम तो क्या कर देते हैं, ये है ही ऐसी, अब तेरे पैसे तो मुझे काटने ही पड़ेंगे, अब यहां क्या होगा भाई, रिसेशन आएगा नहीं आएगा। एक दिन तो वो मजबूरी से नहीं आई और 2 दिन उसका मूड ऑफ हो गया, सिर दर्द, वो कहेगी कौन जाएगा वहां, वहां जाओ तो वहां तो लेक्चर है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो धोखा ही मिलता है, हम अच्छा करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कभी हमें धोखा मिला ही नहीं। तो एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहती हूं, गर्मियों के दिनों में हम लोग अपने घरों में मट्टी का मटका रखते हैं ना पानी पीने के लिए, जहां आप मट्टी का मटका तो कच्चा है, कहीं भी टूट जाएगा, जहां आप मट्टी का मटका रखते हैं वहां वो भी अपना निशान छोड़ देता है। छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, आजकल तो जबकि पक्के घर है, फ्लोरिंग है, आगे तो कच्चे घर हुआ करते थे। अगर मेरे मन में सचमुच सबके लिए शुभ भावनाएं हैं, तो वो अपना निशान छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, क्या विचार है, पक्का है ना। तो अब यहां से आपको ये कला सीख के जाना है, कैसे हम शुभ भावना का दान दें। आप कहेंगे टाइम कहां है बहन जी, तो मैं आपको टाइम सजेस्ट कर सकती हूं, करना ना करना आपकी इच्छा है। आप प्रतिदिन 15 मिनट केवल सवेरे, 15 मिनट शाम को। सवेरे तो जब आप उठते हैं अपने बिस्तर से, थोड़ा फ्रेश हुए, कमरे से बाहर निकलो, आजकल तो लोगों में काफी, मैं समझती हूँ, अवेयरनेस भी है हेल्थ के लिए भी कि जल्दी उठना चाहिए, वॉक करना चाहिए। तो आपको जल्दी 3 बजे उठने के लिए नहीं कहते, लेकिन 5, 5:30 तो उठना ही चाहिए। और उठ के फ्रेश थोड़ा होके और थोड़ा खुले में आप बैठ करके स्वयं स्वयं से बात कीजिए। ये ना सोचिए आज कहां से बिल्टी आनी है, किसका चेक लेना है, किसको चेक देना है, ये तो हम सारा दिन ही करेंगे। पहले मैं अपना चेक, एक भगवान को तो काट दूं, कौन सा चेक, पैसे वाला नहीं, लेकिन एक ये शुभ भावना का चेक कि मैं कौन हूं, मैं उस सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं, और मैं भी कौन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये थोड़ा आनंद लीजिए। सर्वशक्तिवान का अर्थ क्या है, क्या शक्ति है उसमें, क्या वो मरे हुए को जिंदा करेगा, क्या वो किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर देगा, क्या लंगड़े को कोई टांग लगा देगा, नहीं ये नहीं करता है। तो क्या करता है, वो गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है। क्योंकि आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपने वॉमिट कर दिया, तो क्या कहेंगे, ये फूड ठीक था, कहेंगे पता नहीं फूड पॉइजनिंग हो गया, भूख बहुत जोर से लगी थी, उसको आप हेल्दी नहीं मानेंगे, या कहीं खाने में गड़बड़ था या अपने में गड़बड़ था। खाना खाया, हजम हुआ तो शक्ति आएगी, वॉमिट हो गया तो शक्ति नहीं आएगी। तो केवल खाना ही चीज नहीं है, लेकिन खाने के बाद जो शक्ति है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, डाइजेस्ट हुआ, सिक्रीशन ठीक हुआ, अंदर में एनर्जी मिली, एनर्जी की वैल्यू है। तो भगवान भी क्या करता है, हमारे अंदर कर्म करने की हिम्मत देता है। कर्म करने का उमंग उत्साह देता है। कर्म करने की राह दिखाता है। कई लोग ऐसा कंप्लेंट करते हैं, बहन जी बिजनेस तो बहुत अच्छा है पर मैं तो अकेला हूं ना। तो भाई दूसरों, कहता नहीं वो दूसरा है ना, वो दो भाई हैं, एक फैक्ट्री का काम संभाल लेता है और एक बाहर का संभाल लेता है। कोई कहेगा उसको तो बेटा है ना, और अगर दो भाइयों की बनती नहीं फिर क्या होगा, ये भी आपको मालूम होगा, भाई भाई को आजकल तो मरवा देता है, फिर क्या होता है, होता है नहीं होता है। इसलिए मैं अकेला नहीं, लेकिन मेरा साथी कौन है, स्वयं सर्वशक्तिमान है। तो सवेरे सवेरे अपनी इस बैटरी को चार्ज कीजिए। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? करनी चाहिए ना। तो बैठिए जरा एक सेकंड, आपको 2 मिनट के लिए आज आपकी, यूं तो सवेरे योग शिविर यहां भी हुआ होगा, बैटरी आपकी चार्ज हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी सी यूज हुई होगी ना तो फिर से रिचार्ज हो जाएगी। थोड़ा एकदम एक्टिव होके बैठो, कुर्सी का ये बैग छोड़ दो, कुर्सी का सहारा नहीं, कौन सा सहारा काम आएगा बहने, हैं? कौन सा सहारा काम आएगा, सर्वशक्तिवान का सहारा काम आएगा। तो हमारा ये शरीर भी ठीक रहेगा। तो सवेरे सवेरे आप ऐसा समझिए, मैं जैसे उठी एकदम, उठते ही परमात्मा मुझ आत्मा के अंदर ही अंदर आप ये भाव लाइए, मुझ आत्मा के सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु है। वो पिता परमात्मा स्वयं ज्योति स्वरूप, सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान का प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है। जिस प्रकाश को पाकर मन बुद्धि एकदम शांत स्वच्छ है, संस्कार श्रेष्ठ है, शांति संपन्न, आत्मिक स्नेह से भरपूर, ईश्वरीय प्रेम और शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। कुछ क्षणों के लिए डीप साइलेंस में आ जाए। मन ही मन उस सर्वशक्तिवान का शुक्रिया अदा करें और उसे इनवाइट करें। हे सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, आपको आज सारा दिन मेरे साथ रहना है और मुझे आपके साथ रहना है। आप मेरे सच्चे साथी हैं। डीप साइलेंस में जाए, महसूस करें सर्वशक्तिवान स्वयं मेरा साथ। तरीके से आप 10-15 मिनट सवेरे और 10-15 मिनट शाम को, जब आपको फुर्सत मिले शाम को, तो क्योंकि हर एक का अपना अपना प्रकार का धंधा होगा, 8 बजे 9 बजे रात को सोने से पहले खूब अपने आप को एनर्जी से भरपूर कीजिए। जितना हमारा मन खुश होगा, मन शक्तिशाली होगा, तो ये जो हम बाहर के विटामिन्स और सप्लीमेंट लेते रहते हैं ना, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदी बाहर नहीं है। मैं तो कई बार पूछती हूँ कि भाई मंदी, एक बार मैं एक तहसील लेवल के शहर में गई थी, मैंने कहा मंदी है अभी तो अमेरिका में भी। कहता बहन जी, हम एक अमेरिका नहीं, हम तो ऐसे 10 अमेरिका खरीद सकते हैं। मैं उसको देखती रही, ग्रामीण परिवेश का एकदम सिंपल सा। कहता आज भी गांव में आप देखिए, हर माता बहन के पास 1-2 किलो चांदी है, क्योंकि वो लोग मोटा मोटा राजस्थान में तो ऐसा पहनते हैं पांव में हाथ में, और हर किसी के पास 1-2 तोला, ज्यादा नहीं बोला उसने, 1-2 तोला सोना भी है। हैं? राइट, आप राइट कह रहे हैं। ये तो उस, क्योंकि खुद साधारण था, ये उसकी बात है। कहता ऐसा हम 5 अमेरिका खरीद के ला सकते हैं। तो मैंने कहा ये फिर मंदी क्या है? कहता मंदी मन की है। मैं उसको देखती रही। उसके बाद मैंने कईयों से चर्चा की, उन्होंने कहा बहन जी बात बिल्कुल ठीक है, मंदी कहीं नहीं है, केवल कागजों में है। उसने कहा मन की है, वो लोग आजकल पढ़े लिखे कहते हैं कागजों में। इसका मतलब अपने मन को खुशी में लाना है, मन को उमंग उत्साह में लाना है। और ये मन उमंग उत्साह में तब रहेगा जब आप सवेरे सवेरे इस बैटरी को चार्ज करेंगे और रात्रि को चार्ज करेंगे। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जो बिना चलता है, किसी का मोबाइल बिना चार्ज के चलता है? तो इस मोबाइल को भी तो जरा चार्ज करो। तो उसके बाद है, अब कोई है आपकी समस्या? जितनी हमारे अंदर पॉजिटिव, किसी ने क्या कहा, मान लीजिए मैं अब यहां से उठती हूं, किसी ने कह दिया कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या बात बताई, कुछ नहीं बताया, बेकार, मेरे को कोई आके सुना भी देता है, ठीक है। हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी है ना, जरूरी है जिसको मैं लाइक करती हूं आप भी करें? इज इट पॉसिबल? आपको लाइट कलर पसंद है, मुझे डार्क पसंद है, आपको खट्टा पसंद है, मुझे मीठा पसंद है, हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी अपनी है ना। लेकिन मेरी लाइकिंग या डिसलाइकिंग किसी का नुकसान ना करे, बस। क्या विचार है? मेरी लाइकिंग, मैं मीठा खाने वाली हूं ना। अब आप कहते हैं नहीं मुझे तो पसंद नहीं, मुझे तो ऐसे मौसम में पकौड़ा ही चाहिए, नहीं नहीं मैं तो हलवा ही बनाऊंगी। तो भाई ले तेरे लिए पकौड़ा और मेरे लिए हलवा, दोनों खुश रहो ना। नहीं, लास्ट में एक छोटी सी बातें तो बहुत सी आ रही हैं याद। एक अभी जो लेटेस्ट मैंने सुनाया, मैं चेन्नई में गई थी, एक ने मुझे क्वेश्चन लिखकर भेजा कागज में कि मेरी वाइफ जो है वो भी जॉब करती है और उसकी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से ज्यादा है, तो मैं इसको क्या समझूं। माना कहना तो वो यही कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन उसने जो लिखा था, क्या मैं इसको अपने कर्मों का हिसाब किताब समझूं? तो मैंने भी पहले हंसी में जवाब दिया, मैंने कहा इससे खुश किस्मत पति कौन हो सकता है जिसकी पत्नी उससे ज्यादा कमाती है। भाई तू आराम से रह ना, तू ये क्यों सोच रहा है ये ज्यादा कमाती है, एक्चुअली तो ईगो हर्ट हो रहा है। तब मैंने उनको कहा कि देखिए सही बात यह है, अगर वो ज्यादा कमाती है कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मेरा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज है मैं उसको हर काम में सहयोग दूं, रिस्पेक्ट दूं, सत्कार दूं, प्रेम दूं। क्या विचार है आपका? लेकिन हम क्या करते हैं, हम ईगो प्रॉब्लम के कारण जो हमने बात शुरू की थी, अभिमान हमें कहां नीचे गिराता है, हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये मेरे से ज्यादा कमाती है ना, मेरे दोस्त क्या सोचते हैं, परिवार वाले क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। तो बहुत पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। हम किस किस का मुंह बंद कर सकते हैं? हम दो को प्यार से रहना है, यू गिव रिस्पेक्ट, यू कॉपरेट, ना कि सवेरे शाम एक ही तनातन, तुम ज्यादा कमाती हो ना इसलिए तुम ऐसा करती हो और कुछ करना नहीं। तो जहां भी हो हमें अपना ईगो का बीज अगर है तो यहां हमारा जो बाबा का कमरा है ना, लिख के वहां डाल के जाना, बाबा आज से मैंने ये ईगो बस आपको दे दिया, तो ना मुझे अभिमान रखना है और ना स्वार्थ रखना है। कमा रहे हैं इसलिए, चाहे आप कमाओ चाहे वो कमाए, किस लिए? कि घर में खुशी का माहौल हो, बच्चों का अच्छा लालन पालन हो, हम एनर्जी उसमें लगाएं, फोकस हमारा वो क्लियर होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को, यही कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। तो अपनी एनर्जी कहां लगानी है? अपने जीवन के लक्ष्य में। हाँ जी पूछिए। प्रैक्टिकल के लिए ही मैंने आपको बताया। राइट है, आपने बिल्कुल राइट कहा है कि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहला हल, वहां मुझे बुद्धि से अपने को संभालना है। गीता में है, हे अर्जुन मैं दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु का वरदान देता हूं। तो ज्ञान माना है दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट। इंटेलेक्चुअल्स तो हम हैं, मैं तो आजकल कहती हूँ इंटेलेक्चुअल्स की तो मंडी है, जैसे सब्जी मंडी है ना, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की भी मंडी है। लेकिन हम हार कहां रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। अब वहां मुझे बुद्धि से, डिवाइन इंटेलेक्ट क्या है, पॉजिटिविटी, दैट इज डिवाइन इंटेलेक्ट। तो अब मुझे कोई ऐसी रियली ऐसी बात आती है, आती है नो डाउट, ऐसी बात आ गई, अब मुझे क्या करना है, वहां डिवाइन इंटेलेक्ट से फट से अपने को संभालिए पहले। तो ऐसे नहीं कुछ हो गया, घर को आग लग गई, मैं तो वहां खुद ही बेहोश हो गई, हार्ट फेल हो गया, अब लोग मुझे संभालें या घर को संभालें। तो कम से कम अपनी हिम्मत, तभी मैंने कहा पहली बात है हिम्मत, करेज, करेजियस होकर डिवाइन इंटेलेक्ट को यूज कीजिए। फिर आप सोचिए अब मुझे क्या करना है। वहां आपको बैठ के मेडिटेशन नहीं करना है, मेडिटेशन, जैसे आपने रुपया कमाया, आपकी जेब में अभी 100 रुपया है, और मैंने बाय चांस कहा भाई साहब मैं आज घर से निकली ना, पर्स लाना भूल गई हूं, मुझे 50 रुपया दे दो, आप कहेंगे लो बहन जी मेरे पास 100 है, आप 50 ले जाइए। तो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। मेडिटेशन माना है अपनी इंटेलेक्ट को डिवाइन बनाना। पॉजिटिव माना ये नहीं है मैं पॉजिटिव, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और प्रैक्टिकल में अरे तेरे जैसा नालायक तो कोई नहीं। दिस इज नॉट द मेडिटेशन। मेडिटेशन ये है, प्रैक्टिकल उसका स्वरूप ये है, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये कोई सिचुएशन आई है तो पहले तो हाँ होना क्या चाहिए, मैंने समझ लिया यहां ईगो प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया ना हस्बैंड वाइफ की एक्चुअली ईगो प्रॉब्लम थी। अब करना क्या है, घर चलाना है या घर बिखेरना है, वो आप सोच लो। घर चलाना है, गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर आत्मा के लिए प्यार रियली पैदा होगा। आप यहां देख लीजिए, प्रूफ है, प्रैक्टिकल है। आप बताइए, मैं समझती हूं कोई ऐसा, कोई एक आधा हो सकता है जिसके कोई रिलेशन वाले यहां रहते हों, नहीं तो कोई नहीं है ना, पर सब आपको प्यार से नाश्ता लंच डिनर सर्व कर रहे हैं ना, या कहते हैं 125 रुपए की थाली और 5 रुपए की थाली। दिस इज कॉल्ड डिवाइन फैमिली सिस्टम। तो इस डिविनिटी को ही हमें अपने हर फील्ड में डेवलप करना है। ये यहां हम आपको डेमो दे रहे हैं, अब आपको भी अपने चारों और इसी को डेवलप करना है। ठीक है, और कोई बात? ओके, तो चलो एक मिनट फिर साइलेंस में ये तो चलो कर ही लो, कि जो भी जब भी कोई काम शुरू करो तो साइलेंस से, काम खत्म करो तो साइलेंस से। हम चार दूसरे लोगों में जरूरी नहीं है वहां कहना, तो भी कहो अच्छा चलो भाई, अपने आप को अपने जब कुर्सी पर बैठ गए, अपनी गद्दी पर बैठ गए, तो एक मिनट साइलेंस। और एक मिनट साइलेंस का मतलब है कि मैं उस ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान के सामने हूं, क्योंकि मुझे एनर्जी हर घड़ी चाहिए, दैट इज द सॉल्यूशन ओनली। तो लीजिए उसकी एक मिनट के लिए, गो विद इन इन डीप साइलेंस। मैं चैतन्य शक्ति सर्वशक्तिवान के सामने, ओम शांति। थैंक यू।